जब भीड़ में खोए हो और कोई अपनाए वही है, जब धूप में थोड़ी हवा चली ये पल हाँ वही है, और तुम कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है, और फकीर को जब खुदा मिले ये पल
शांति। भारत के जम्मू एवं कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर में घटी एक सत्य घटना का वर्णन एक सिपाही ने किया है। उसने लिखा है कि एक बार एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय कि अपने रास्ते पर थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी। उन्हें लगा कि अगर एक कप चाय मिल जाए तो ताकत आ जाए। रात का समय था, आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई पड़ी, परंतु अफसोस ये था कि उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तुड़वाने को राजी हो गए। खैर, ताला तो टूट गया। अंदर उन्हें चाय बनाने की सभी सामग्री भी मिल गई और सभी जवानों ने चाय बनाई, बिस्किट खाए और वहाँ से निकल पड़े। परंतु मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने पर्स से 1000 का नोट निकाला और चीनी के एक डब्बे के नीचे दबा कर रख दिया। उसके बाद सभी दुकान का शटर ठीक से बंद करवा कर आगे बढ़ गए। 3 महीने बीत गए और फिर सकुशल यही 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए वो सब रुके। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर बहुत ही खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। और धीरे धीरे वो जब वहाँ बैठे थे तो वो दुकान वाला अपने जीवन की कहानियाँ सुनाने लगा। एक जवान ने पूछा, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो? अगर भगवान सच में होता तो उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा होता? तब वो बाबा बोला, नहीं साहब ऐसा नहीं है, भगवान के बारे में ऐसा नहीं कहिए, भगवान तो है, सच में है, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे और फिर बूढ़े ने कहा कि साहब मैं एक बार बहुत मुसीबत में था, मेरा एक इकलौता जो बेटा था उसको आतंकवादी पकड़ कर लेके गए, उसे बहुत मारा पीटा, पर जब उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली तो फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया, मैं बहुत तंगी में था और आतंकवादियों के डर से किसी से उधार भी नहीं ले सकता था, मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उसी रात मैं बहुत रोया, भगवान से प्रार्थना की, और आपको पता है भगवान उस दिन खुद मेरे घर में आए। मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, ताला टूटा देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वो सब लूट गया। मैं दुकान में देखा तो क्या 1,000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने खुद मेरे लिए रखा हुआ था। साहब, उस दिन भगवान ने जो मेरे लिए किया मैं कभी नहीं भूल सकता। 1,000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी मैं बयान नहीं कर सकता था। भगवान है साहब, भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों से साफ नजर आ रहा था। वो 15 के 15 जवान मेजर की ओर देखने लगे और उन्हें एक स्पष्ट निर्देश दिखाई दे रहा था, चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, मैं जानता हूँ भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार है। और उस दिन उन 15 जोड़ी जवान आँखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य देखा। तो ये जो घटना है सत्य घटना है जो दर्शाती है उस आत्मा को जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। दूसरे माने या न माने, दूसरे समझे या न समझे, दूसरे जाने या ना जाने, वो खुद जानता है कि मेरे लिए भगवान है। और जो वो खुद जानता है उसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गीत कहता है, जब भीड़ में खोए हो और कोई अपनाए वही है। यदि तुम भीड़ में खोए हो और यदि कोई तुम्हें अपना ले, बस वो जो पल है वही पल है। जब धूप में बहुत थोड़ी सी हवा भी चल जाए, बस यही वो पल है। कड़ी धूप में, कड़कड़ाती धूप में जरा सी शीतल हवाएं चले, बस वही पल है। और धुन धुन कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है। और जब हृदय को कोई धुन स्पर्श कर जाती है, बस वही पल है। और फकीर को जब खुदा मिले, ये पल हाँ वही है। किसी फकीर को खुदा मिल जाए, बस यही तो वो पल है। तो अभी अभी रविवार को अव्यक्त वाणी चली, जिसमें बाबा ने हम सबको एक दर्पण दिया, एक मिरर दिया, एक आईना दिया। और वो आईना कौन सा था? वो आईना था स्वयं को देखने का। जितना स्वयं स्वयं को जान सकते उतना और नहीं जान सकते, तो स्वयं को जानो। अंग्रेजी में कहते हैं नो थाइसेल्फ, अपने आप को जानना है। जैसे इस दुकान वाले का विश्वास था कि हाँ भगवान है और वो खुद आया था, उसने खुद वो नोट वहां रखी थी, चाहे दूसरे माने या ना माने, उसे खुद ये पता है, वो खुद अपने आप को जानता है, ये उसे विश्वास है कि हाँ वो है। क्या हमने इस हद तक अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है, अपने विश्वास को समझा है, अपने निश्चय को समझा है? बाबा ने कहा, ये जो वर्तमान है ये एक दर्पण है जो मैंने तुमको दिया है। इस दर्पण में देखो तो तुम अपने भविष्य को देख सकते हो। इस दर्पण में झांक कर देखो, इस आईने में तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। ये दर्पण भविष्य का दिग्दर्शक है। तो आज हम इसी मुरली को समझने की कोशिश करेंगे। मुरली में बहुत सी गहरी बातें हैं, परंतु हमें इसे उतनी ही गहराई से समझना है। और जब तक हम इसे गहराई से नहीं समझेंगे, जीवन में वो गहराई नहीं आएगी जो बाबा चाहते हैं। तो सारी मुरली दर्पण पर है, भविष्य के दिग्दर्शक पर है। फिर से हम बाबा का महावाक्य कह रहे हैं, जितना स्वयं को स्वयं जान सकते हो उतना और नहीं जान सकते, तो स्वयं को जानो। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ से आया हूँ। तो मुरली को हम 10 भागों में विभाजित करेंगे और हर भाग में बार बार अपने आप से यही प्रश्न पूछेंगे, क्या मैंने अपने आप को जाना है। स्वयं को जानो, स्वयं को जानो, नो थाइसेल्फ, नो योरसेल्फ। तो चलो चालू करते हैं मुरली को। सबसे पहला भाग मुरली का, जिसको हम कहेंगे बॉडी मास्टरी। बाबा ने कहा इस मुरली में कि बाप रचयिता है, तुम भी रचयिता हो, और किसके तुम रचयिता हो, इस देह के रचयिता है। हम सोच रहे थे ये कितना अच्छा चिंतन का बिंदु है कि हम ब्राह्मण आत्माओं ने कौन कौन सी चीज़ों की रचना की है, या फिर हम कौन कौन सी चीज़ों के रचता है। एक तो उत्तर बाबा ने यही दे दिया है कि हम रचता है इस देह के, दूसरा हम रचता है प्रकृति के, तीसरा हम रचता है समय के, और चौथा हम रचता है विज्ञान के। तो ये चार बातें हो सकती है, और भी बहुत सी बातें हो सकती है। गहराई से इस पर चिंतन किया जा सकता है कि हमने किन किन बातों की रचना की है। हम संकल्पों के रचयिता है, हम भावनाओं के रचयिता है, हम कर्मों के रचयिता है, हम शब्दों के रचयिता है, हम संबंधों के रचयिता है, हमारी चलन के हम रचयिता है, हम स्वप्नों के रचयिता है, हम भविष्य के रचयिता है, हम स्मृति के रचयिता है, हम कल्पनाओं के रचयिता है, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो यहाँ पर बाबा ने कहा तुम देह के रचता हो, और इस विषय में बाबा ने चार बातें, चार प्रश्न पूछे हैं कि यदि ये देह का मैं रचता हूँ तो मुझ में ये चार बातें होनी चाहिए, या फिर ये चार प्रश्न। और वो चार प्रश्न हैं, पहला एक्सटेंट, दूसरा अट्रैक्शन, तीसरा सेवा, और चौथा मास्टर। हम इसको कहेंगे EASM, EASM। तो पहला प्रश्न है एक्सटेंट, इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं, अर्थात मैं इस देह का रचता कहाँ तक हूँ। दूसरा प्रश्न है अट्रैक्शन, देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती। तो बाबा पूछ रहे हैं ये देह तुम्हें आकर्षित तो नहीं करता है, और तुम मालिक हो, ये भुला तो नहीं देती है। तीसरा प्रश्न है सेवा, मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते हो। और चौथा प्रश्न है जब चाहे जो चाहे मालिक बन कर सकते हो, अर्थात मास्टर। तो ये चार प्रश्न बाबा ने यहाँ पर पूछे हैं। अब अपने आप को पूछना है कि मैंने अपने आप को कहाँ तक जाना है। जैसे हमने कहा हम 10 बातें लेंगे स्वयं को जानने की, तो सबसे पहली बात है जो हमें स्वयं के बारे में जानना है वो है कि इस देह का मैं रचता कहाँ तक हूँ, एक्सटेंट, किस हद तक मैं इस देह का रचता हूँ। दूसरी बात है ये देह मुझे कहाँ तक आकर्षित करती है और मालिकपन भुलाती है, सेवा में इस देह को कितना मैं लगाता हूँ, और इस देह का मैं मास्टर कितना बनाऊँ। अब यहाँ पर गहराई से सोचने की बात है कि एक तो आत्मा है और दूसरी बात है शरीर। इस शरीर का मैं कितना मालिक हूँ, कितना इस देह को मैं वश में रखता हूँ, कितना इस देह को मैंने सेवा में लगाया है, और कितना इस देह के आकर्षण से मैं मुक्त हूँ। ये सारे प्रश्न हैं, क्या किया जाए। जैसे आज की जो साकार मुरली है, इसमें बाबा ने कहा है सर्विस में कभी थकना नहीं है तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए सर्विस में तुम्हें थकना नहीं है। आज 24 तारीख मार्च मास, आज की मुरली में वाक्य आता है, पूरी मुरली सेवा पर है, जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हें थकना नहीं है। तो इस देह के कुछ गुणधर्म हैं, इस देह को भूख लगती है, इस देह को प्यास लगती है, इस देह को थकान होती है, इस देह को नींद आती है या देह तापमान से प्रभावित होता है और ये देह विकारों की तरफ आकर्षित होता है। इंद्रिय हमारे वश से बाहर जाती है। ये सातों बातों को हमने कितना वश में किया है। सबसे पहली भूख, दूसरा प्यास, तीसरी थकान, चौथी नींद, पांचवी बात ये देह के इंद्रियों को हमने कितना अपने वश में किया है। कितनी ये सारी इंद्रिय हमारे वश में रहती है। तापमान, बाहर के तापमान से अंदर का तापमान प्रभावित ना हो। और सातवीं बात, इंद्रियां हमारे वश में कितनी है। तो ये सात बातें प्रमाण है कि हमने अपनी देह को वश में कर रखा है। और जिसकी ये सातों बातें वश में नहीं है, अर्थात देह वश में नहीं है, योगी के लिए तो यहां तक कहा जाता है इस साथ में और तीन बातें ऐड कर दो। सबसे पहला बीमारी, दूसरा बुढ़ापा और तीसरा मृत्यु। योगी अर्थात जिसने बुढ़ापे को जीत लिया है, योगी अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया है, और योगी अर्थात जिसने बीमारी को जीत लिया। योगी इच्छा मृत्यु के वरदान से चलता है। वो खुद ये निर्णय करता है कि मुझे कब मरना है, कब इस देह का मैं त्याग करूं, और अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देता है। तो शरीर को जीतना अर्थात इन दस बातों को जीतना। तो सबसे पहला प्रश्न, फिर से उसी प्रश्न पर आते हैं, मैंने स्वयं को कहां तक जाना है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते हो उतना और कोई नहीं जान सकता, तो स्वयं को जानो। इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब बाबा ने शरीर के संबंध में दो बातें कही है। कहा है कि यह शरीर के जो संबंध है और जो संस्कार है उसके तुम अधिकारी कितने बने हो। और संबंध के विषय में फिर दो बातें हैं, न्यारा प्यारापन कितना है संबंधों में, और संस्कारों के विषय में फिर दो बातें हैं, निर्माण कितने हो और निर्माण कितने हो, छोटा ना अर्थात निरंकारी कितने हो, बड़ा ना अर्थात क्रिएटिव कितने हो, कंस्ट्रक्टिव कितने हो, निर्माण का कार्य कितना कर रहे हो। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ दी है जिसमें 10-12 बातें एक साथ कह दी कि जब तुम किसी के संपर्क में आते हो, चाहे संपर्क में या संबंध में, चाहे दूर वालों के चाहे नजदीक वालों के, चाहे तुम जानते हो या न जानते हो, सभी आत्माएं जो तुम्हारे संपर्क में आए उन सभी को एक बात की महसूसता हो, और वो बात कौन सी है कि ये दाता है, वो बात कौन सी है कि ये इसको देखकर अपनापन महसूस होता है, वो बात कौन सी है सबके दिल से स्नेह की आशीर्वाद निकले, शुभकामनाएं निकले, वो बात कौन सी है सभी को लगे कि इसमें दातापन की विशेषता प्रेम है, शांति है, खुशी है, आनंद है, सहयोग है, हिम्मत है, उमंग है, उल्लास है, सभी को लगे कि ये सदा विशाल बुद्धि है, सभी को लगे ये सदा विशाल दिल है, तो ऐसी अनुभूति ये सबको हो। बाबा ने कहा ये सब निशानियां हैं, और इसलिए अपने आप को चेक करो क्या बनने वाले हो। ये दर्पण मैंने तुम सबको दिया है, स्वयं स्वयं को जान सकते हो, जितना स्वयं स्वयं को जान सकते हो उतना और नहीं जान सकते, इसलिए स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। तो ये सबसे पहली बात थी शरीर, हम इसको जैसे कहा कहेंगे बॉडी मास्टरी। तो कुछ स्थूल बातें हैं और कुछ सूक्ष्म बातें हैं। स्थूल जो 10 बातें गिनाई, और सूक्ष्म में संबंध संस्कार में न्यारापन प्यारापन, निर्माण निर्माण, और जिसके भी संपर्क में आए वो दातापन का अनुभूति ये करे, उसको लगे कि ये अपना है, उसको लगे कि इनको उनके दिल से स्नेह की आशीर्वाद निकले, उमंग है, उत्साह है, हिम्मत है, विशाल दिल है, बड़ी दिल है, ये सब की अनुभूति हो। तो बाबा ने कहा ये सब तुम अभी जान सकते हो, ये ही दर्पण है। तो ये थी सबसे पहली बात बॉडी मास्टरी की। अब दूसरी बात स्वयं स्वयं को जानने की। तो यहाँ बाबा बात कर रहे हैं मधुबन निवासियों से। वैसे तो पूरी मुरली मधुबन निवासियों की है, पर यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है बाबा ने, तुलना की है। मधुबन निवासी एक तरफ, संसार में रहने वाले एक तरफ। संसार में रहने वाले, बाहर रहने वाले में सेंटर निवासी भी आ गए और जो घर गृहस्थी में रहते हैं वो भी आ गए। तो बाबा ने यहाँ पर मधुबन निवासियों को कहा कि तुम्हारी बहुत सहज जीवन है, बाहर वालों को सहन करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, हंस बगुलों के बीच रहना पड़ता है, और तुम्हें तो ना सहन करना पड़ता है, ना सामना करना पड़ता है, ना हंस बगुलों के बीच रहना पड़ता है, तो तुम्हारा पुरुषार्थ कितना ज्यादा होना चाहिए। पर इसमें दोनों बातें, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बाबा ने कहा यहाँ पर कि तुम्हें कोई कमाने की चिंता नहीं, उन्हें कमाने की चिंता है, तुम्हें तो बुद्धि का भी आराम है तो शरीर का भी आराम है। बाबा ने कहा तुमको करना ही क्या, स्टडी करो वो भी बाप की, और सेवा करो वो भी यज्ञ सेवा। तो ये सब होने के बाद पर यदि इतना सब कुछ मिलने के बाद यदि कोई कुछ ना करे तो उसको क्या कहेंगे। और जो बाहर वालों के लिए बाबा कह रहे हैं कि उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर उसका फायदा भी है, जब मेहनत करनी पड़ती है, जब सामना करना पड़ता है, जब सहन करना पड़ता है, जब हंस बगुलों को सहन करना पड़ता है, तब पुरुषार्थ में तीव्रता भी उतनी ही आ जाती है। और जिसको सब कुछ सहज मिल जाए शायद उसका पुरुषार्थ ढीला हो जाए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में जो रहते हैं तो तुमने स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है। चैरिटी बिगिंस एट होम, मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग है, वायुमंडल भी है, सब मदद है, तो जहाँ सर्व का सहयोग है वहाँ सब कुछ सहज है। जैसा भक्ति मार्ग में सन्यासियों के लिए कहा जाता है कि सन्यासी कमाता नहीं है, सन्यासियों को सब कुछ मुफ्त में मिलता है, वो जवान होता है, जाता है, भीख मांगता है, भिक्षाटन करता है और खाता है, परंतु जब वो ये करता है तो उसके पास उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, और उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि उसे वो जो संसार में फंसे हुए गृहस्थी है उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना, उन्हें मुक्ति का मार्ग बताना, स्वयं निर्विकारी रहना और दूसरों को निर्विकारी बनाना। कल हमें एक बाबा की बहुत ही दुर्लभ साकार मुरली मिली। वो मुरली पूरी अंग्रेजी में है और उस मुरली का नाम है पीयू की पदरामनी। वो दादा विश्वरतन और लच्छू दादी के शरीर त्यागने के बाद उनके जो नोट्स थे और 10-12 व्यक्त संदेश थे उसको बनाकर बनाई हुई मुरली है। और इतनी गहरी मुरली है, इतनी गहरी मुरली है कि जिसका एक एक पैराग्राफ बाबा की ऐसी ऐसी गहराई को दर्शाता है जो बाबा ने कही हुई है, और जो एक गहरी बात उसमें सेवा की आई है, और वो है कि बाबा ने किस प्रकार की सेवा करने को कहा है। और जो बात हम पढ़ रहे थे उसमें बाबा ने कहा कि तुम्हें कौन सी सेवा करनी है, तो तुम्हें वो सेवा करनी है कि अपने पवित्र संकल्पों से दूसरों की अपवित्रता को नष्ट करना है। और यदि तुम सेवा करते हुए तुम्हारे मन में अपवित्र संकल्प है या कभी भी तुम्हारे मन में अपवित्र संकल्प है तो वो अपवित्र संकल्प दूसरों तक पहुंच रहे हैं और उन पर वो उनका बोझ बढ़ रहा है और उस बोझ से तुम्हारे पाप बढ़ रहे हैं। ऐसे आशय में उसमें कुछ बातें बाबा ने कही हुई है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जिन्हें सब कुछ मिल रहा है, जिन्हें कमाना नहीं पड़ रहा है, जिन्हें मुफ्त का भोजन मिल रहा है, सब कुछ जिनको सहज मिल रहा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है, फिर उन्हें तपस्या भी उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। फिर तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर वन हो गई ना, क्योंकि एक ही काम है बाबा ने कहा, एक ही बात है, एक ही लात है, दूसरा कुछ है ही नहीं। फिर उनमें यह भी नहीं होना चाहिए सिर्फ मेरी चार्ज है, यह नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा सेंटर है यह नहीं होना चाहिए, वैसे मेरी चार्ज है, मैं इंचार्ज हूं, मैं हेड हूं, मेरा डिपार्टमेंट है, यह भी नहीं होना चाहिए। तो यहां फिर से उसी प्रश्न की तरफ आते हैं जो बाबा ने कहा कि स्वयं स्वयं को जान सकते हो। तो मधुबन में रहते हुए, मधुबन की इस पावन भूमि में रहते हुए, मधुबन की इस भगवान की अवतरण भूमि में रहते हुए, ब्रह्मा की इस तपोभूमि में रहते हुए, क्या मेरा तप वैसा ही है जैसा ब्रह्मा का है? वर्तमान समय भारत में या विश्व भर में जो स्थिति चालू है, जिसको कहते हैं लॉकडाउन, एकांतवास, जिसको कहते हैं क्वारंटाइन, जैसे सारी दुनिया हो गई है। इसमें हमने देखा है ब्राह्मण परिवार में इस क्वारंटाइन की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से चार प्रकार की आत्माओं में ये यज्ञ विभाजित हुआ है। सबसे पहले तो वो आत्माएं हैं जो बहुत खुश हो गई है, क्योंकि जिन्हें हमेशा ही पुरुषार्थ करने का उमंग था, जिसे हमेशा ही तपस्या करने का उमंग था, जिन्हें हमेशा ही मौन में रहने की इच्छा थी, जिन्हें हमेशा ही एकांतवास चाहिए था, जिन्हें हमेशा ही अंतर्मुखता की अवस्था खींचती थी, ऐसी आत्माएं एकदम खुश हो गई है कि जिन्हें अब नौकरी पर नहीं जाना पड़ रहा है, जो घर में ही बंद हो गई है, लॉक हो गई है, और घर में रहते हुए अब व्यक्त मूल्यों का अध्ययन कर रही है, जो घर में रहते हुए जिनका योग का चार्ट 8 घंटे से 14 घंटा हो गया है, एक तो वो आत्मा है। दूसरी वो आत्माएं हैं जो कि अंदर जिनकी जो तभी हुई वासनाएं थी वो बाहर निकल रही है, टीवी देखने में लगी हुई है, फिल्में देखने में लगी हुई है, खेल कूद में लगी हुई है, घर के घर बैठे हुए, और वो सब कुछ कर रही है जो उनको करना नहीं था, जो हमेशा ही करना था पर कर नहीं सकती थी। और तीसरे प्रकार की वो आत्माएं हैं जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, बेचैन है, ना तो ज्ञान योग कर सक रही है, ना तो भोग विलास में डूब सक रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और चौथे प्रकार की वो आत्माएं हैं जो उदास हो गई है इस कर्फ्यू ने, इस क्वारंटाइन ने, इस लॉकडाउन ने, जिन्हें बहुत उदास कर दिया है, जो तीव्र पुरुषार्थी थे कभी, जो नौकरी करते थे, जॉब करते थे, सेवाएं करते थे, जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से ये खालीपन आ गया है और एकदम से उदास हो गए, ज्ञान को छोड़ने की सोच रहे। तो ब्राह्मणों में भी ये चार ग्रुप हो गए। प्रश्न ये है, मैं कौन सी आत्मा हूं? क्या मैं वो आत्मा हूं जो तीव्र पुरुषार्थ में लग गई है? क्या मैं वो आत्मा हूं जो भोग विलास में डूब गई है? या क्या मैं वो आत्मा हूं जो कंफ्यूज हो गई है, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं करूं क्या, कैसे बिताऊं ये पल? और चौथी वो आत्मा है जो कि उदास हो गई है, डिप्रेशन में चली गई है, सीधा सीधा बस कह नहीं रही है परंतु स्थिति वही है जो डिप्रेशन की है, अवसादग्रस्त हो गई है। तो क्या किया जाए? फिर से स्वयं स्वयं को जितना जान सकते उतना दूसरा नहीं जान सकते। अभी ये स्थिति है, इसी स्थिति में वास्तव में स्वयं की चेकिंग हो सकती है। और एक समय तो बाबा ने कह दिया, एक समय आएगा, रमेश भाई जी से पर्सनल मुलाकात में कभी बाबा ने कहा था कि एक समय आएगा घर से बाहर नहीं निकल सकोगे, वो समय अब है। रिहर्सल होगी पर एक सेकंड में रिहर्सल रियल हो जाएगी। तो ये दूसरी पॉइंट है जो मधुबन निवासियों के लिए जो बाबा ने कहा है, अपने आप को चेक करो। एक कमरे में यदि बंद कर दिया जाए 21 दिन के लिए, न मुरली, ना कोई किताब, ना सोशल मीडिया, ना इंटरनेट, ना सुख का कोई साधन, बस कमरे में बंद हो जाए, ऐसी स्थिति में हमारे मन में कौन से भाव उठेंगे? ऐसी परिस्थिति में हम कितना अचल अडोल स्थिर रह पाएंगे? अब तीसरी बात आते हैं, हम 10 बातें लेने वाली है। पहली बॉडी मास्टरी, दूसरी मधुबन निवासी, तीसरा है बाप समान। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी, वह कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों में यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने। तो यहां बाबा ने एक महत्वपूर्ण बात कही है और वो बात है संतुष्टता की। दो प्रश्न, पहले स्वयं से पूछो अपने पुरुषार्थ से, स्वभाव संस्कार से कितना संतुष्ट हो, और दूसरा प्रश्न है दूसरे मुझसे कितना संतुष्ट है। ना स्वयं डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करे, ये है संतुष्टता। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। तो बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए लोग आएंगे, पर उनके मुख से मन से संतुष्टता की विशेषता उनको अनुभव हो। मैं ऐसे करके बनूं और बनाऊं, बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। तो ये जो तीसरी बात थी वो है बाप समान बनने की, और बाप समान बनने के लिए बाबा ने कहा संतुष्टता। तो कितने हम अचरड़ोल रहते हैं, कितना हम खुद ना डिस्टर्ब हो ना दूसरों को डिस्टर्ब करे। खुद तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, परंतु डिस्टर्ब जरूर हो जाते और छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब हो जाते। इसलिए हमें अपने आप को समझना है, आसपास जो आत्माएं हैं उनको भी समझना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हें अपने आसपास के पत्तों को समझना है, उनका स्वभाव क्या है, उनका संस्कार क्या है। अगर उनको नहीं समझोगे तो बार बार उनके स्वभाव संस्कार से खुद डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो ये भी एक तीसरा प्रश्न है जो अपने आप को ही देखना है कि मैं कितना चरडोल रहता हूँ, मैं कितना संतुष्ट रहता हूँ, अपने पुरुषार्थ से कितना संतुष्ट हूँ, अपने स्वभाव संस्कार से कितना संतुष्ट हूँ, या मेरा ही स्वभाव संस्कार कई बार विद्रोह करता है और मेरा ही स्वभाव संस्कार कई बार मुझे पराजित कर देता है। क्या हो रहा है अपने आप को देखना है। और रही बात खुद डिस्टर्ब न होने की, तो सबसे पहले तो एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से डिस्टर्बर्स, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जब भी वो बात हो जाती है, वो डिस्टर्बेंस एक घंटा चलता है, दो घंटा चलता है, कई बार छः घंटा, कई बार एक दिन, कई बार दो दिन, कई बार एक हफ्ता, कई बार कई हफ्ते, और कई बार कई मास, और कई मास के बाद कई साल तक चल रहा है। कुछ भी करके अपने आप को डिस्टर्बेंस से मुक्त करना है। चाहे जगह बदल दो, या फिर ऐसी आत्माओं के सानिध्य में जाओ जो कि अवेकंड मास्टर्स है, जो कभी नहीं सोते, जिनकी चेतना निरंतर जागृत रहती है। तो ये थी तीसरी बात। अब चौथी बात की तरफ आते हैं, और चौथी बात है दादियों से मुलाकात। इसमें बाबा ने संगठन की शक्ति के बारे में कहा है, और एक बहुत सूक्ष्म बात कही है कि बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही है। इतनी सब श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प है तो साकार रूप में होना ही है। तो बाबा के पास हमारे श्रेष्ठ संकल्प पहुंचते हैं। जब भी हम बाबा से बात करते हैं, हमारा जो डायलॉग है वो कभी भी यूनिलैटरल एक तरफा नहीं होता है। बाबा हमारे हर संवाद में पार्टिसिपेट करते हैं। इस विश्वास के साथ संकल्प करना है, हमारा एक एक संकल्प बाबा तक पहुंचता है। तो बाबा ने इसमें संगठन की शक्ति के बारे में कहा कि बाकी सब गद्दियां हिलेगी, पर और कितनी भी हिलाने की कोशिश करे, जो स्व की स्वराज्य की गद्दी है वो नहीं हिलेगी। संगठन की शक्ति जो है वो कभी भी हिलेगी नहीं, तुमको अचल अडोल रहेगी रखेगी। बाबा ने कहा ये संगठन किला है, इसलिए संगठन के किले पर वार नहीं हो सकता है, और विजय तो तुम्हारी है ही, केवल तुमको रिपीट करना है। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार है। और इस संगठन की शक्ति का आधार और एक चीज़ बताई, और वो है रिगार्ड देना। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमको सम्मान मिलेगा, इसमें दाता बनना है। और एक दूसरे सूक्ष्म बात यहाँ पर है, बाबा ने कहा विधि चेंज हुई है ना बाप दादा से मिलन की, तो वृद्धि प्रमाण मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। और वो तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे यज्ञ में मिलने की विधि चेंज हुई है। तो यहाँ तीन चार बातें हैं जो हमें अपने आप में देखनी है। सबसे पहले हमारे सारे संकल्प जो बाबा तक पहुँच रहे हैं, संगठन की शक्ति, और बाकी सब शक्तियाँ हिलेगी, बाकी सब गद्दियाँ हिलेगी, स्व की राज्य की गद्दी नहीं हिलेगी। और फिर इस शक्ति का आधार है, इस संगठन एक किला है, इस पर कोई भी वार नहीं कर सकता, तुम्हारी विजय निश्चित है, केवल तुम्हें विजयी बनना है। और विधि बदलेगी, और एक दूसरे को रिगार्ड देना, यही रिगार्ड लेना है। तो इस बात में स्वयं को चेक करना है। एक लिस्ट यहाँ पर फिर से बना सकते हैं, ऐसी वो कौन सी आत्मा है जिनके लिए हमारे मन में बहुत ही कम सम्मान है, रिस्पेक्ट है, ऐसी वो कौन सी आत्मा है और क्यों, शायद ऐसी कुछ आत्मा है जिनको हमेशा हमने देखा है, शायद वो आगे पीछे करती रहती है, चाटुकारिता करती है, चाहे वो आत्माएं हैं जिन्हें नाम मान शान का बहुत ज़्यादा शौक है और पुरुषार्थ जीरो है, जो केवल दिखावा और आडंबर और ढोंग करती है। ऐसी चाहे कितनी भी आत्माएं हैं, परंतु उनको देखते हुए बाबा के क्या संकल्प चलते होंगे, बाबा क्या सोचता होगा। वो तो ये सोचता ही होगा ना, चाहे ये कैसी भी हो, पर उनमें एक विशेषता तो ज़रूर है, उन्होंने भगवान को तो जाना ना, तो जैसे भगवान उनको देखता है, हमें भी उनको उसी निर्दोष दृष्टि से देखना है। जिस प्यू की पदरामणि मुरली की हम बात कर रहे थे, उसमें और एक सूक्ष्म बात हमको कल पढ़ने को मिली, जिसमें बाबा ने कहा है कि यदि ड्रामा में कोई गलती कर रहा है तो उसे संपूर्ण गलती करने का ही उसका पार्ट है, उसको इसी रीति से देखो कि वो गलती भी संपूर्ण रीति से जो कर रहा है वो ड्रामा अनुसार ही संपूर्ण गलती कर रहा है और वही उसका संपूर्ण पार्ट है। जैसे कल की जो मुरली थी 22 तारीख को, उसमें बाबा ने कहा था ये खेल है, ये ड्रामा भी नहीं है, उस वैसा ड्रामा नहीं है, बेहद का ड्रामा है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती है। तो ये जो आत्मा है और जो गलती कर रही है और जो मैं देख रहा हूं, तो बाबा ने कहा जब ऐसा किसी को देखो तो ये सोचो कि ये संपूर्ण गलती कर रहा है और इसकी संपूर्ण गलती करने का ही पार्ट है। रावण को वैसे ही जोर जोर से हंसना है तो ही तो उसे बेस्ट विलन का अवार्ड मिलेगा, तो इसकी कोई उस रीति से उसकी कोई गलती नहीं है। तो ये एक बात हो गई। तो ये थी चौथी पॉइंट। अब पांचवी पॉइंट में आ जाओ, पार्टी नंबर 1। यहां पर भी अपने आप को चेक करना है। यहां बाबा ने कहा दान की बात, सब कुछ देते जाओ, निर्बल को शक्तियां दो, जो भी तुम्हें मिले सब देते जाओ, जो भी मिला वह देते जाओ, जितना देते जाओगे उतना बढ़ते जाएगा, सदा देवी अर्थात देने वाली। तो यहां फिर से अपने आप को वही बात में चेक करना है, स्वयं को मैंने कितना जाना है, क्या मैं दाता बना हूं, आज की साकार मुरली में कितनी बातें बाबा ने कही है, जो सेवा करेंगे केवल वही दिल पर चढ़ेंगे, क्या मैं दाता बना हूं। बाबा ने कहा खड़े हो जाओ मंदिर के सामने, समझाओ सबको, शंकराचार्य को समझाओ। तो जो भी मिला, यहाँ पे स्थूल बातें भी है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्थूल बातें हैं रखी हुई है जो हम कभी उसका उपयोग नहीं करते। अलमारी खोल कर देखो तो कितनी साड़ियां उसमें है, कबर्ड खोल के देखो तो कितने शूज इतने उसमें है, कितनी स्थूल चीजें हमारे पास है, कितने ब्लैंकेट हमारे पास है, कितनी बेडशीट्स हमारे पास है, कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास है, कितनी एक्स्ट्रा किताबें हमारे पास है, कितनी डेकोरेशन का सामान हमारे पास है, कितनी कैरी बैग, कितनी हैंड बैग, कितनी सूटकेस हमारे पास रखी हुई है, कितने हैंकरचीफ हमारे पास रखे हुए हैं, कितनी एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास है। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो देते जाओ। कितने स्वेटर हमारे पास है कि हमने कितने वो दिए, कितनी चप्पलें हमारे पास है कितनी हमने वो दी। बाबा ने कहा देते जाओ, देने से बढ़ेगी। कितनी खाने की चीजें हमारे पास है, कितने ड्राई फ्रूट्स हमने छिपा के रखे हुए, कितने फल हमारे पास है रख रख के सड़ गए पर दिए नहीं किसी को, बाथरूम में कितनी सारी सामान है, सामग्री है जो ऐसी ही पड़ी हुई है जो हम भी प्रयोग नहीं कर रहे ना किसी को दे रहे, कितने कैलेंडर रखे हुए हैं, कितनी चीजें हमने दी है, कितनी कंगी रखी हुई है कितनी हमने दी है। बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है वो सब के सब देते जाओ। कितने अनसिलाई किए हुए कपड़े हैं देते जाओ। उसके बाद छठवीं पॉइंट, बाबा ने कहा है सुनना और करना दोनों साथ साथ हो, और उसमें और एक सूक्ष्म बात है, सुनने का अंदाज क्या है, मुरली में सभी आते, सभी बैठते, सुनते, डायरी में लिखते और जाते। एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, मेरे सुनने का अंदाज क्या है, कितनी क्लासेस है यज्ञ में, क्लासेस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर सुनने का अंदाज क्या है। ऐसी सुनो अगर कोई क्लास सुनने को मिले कि सुनाने वाला भी जो बात करता नहीं है, केवल जो बोलता है उससे भी आगे निकल जाता। सुनाने वाला तो सुना कर चला गया, पर हम उस बात को इस रीति से पकड़े कि ये जो सुना रहा है इससे भी मुझे आगे चले जाना है। तो ये प्रश्न बाबा ने पूछा है मुरली में, स्वयं स्वयं को जान सकते हो, सुनाने का, सुनने का अंदाज क्या है। और फिर कहा कि सुनना और करना जब समान हो जाएगा तो फिर क्या बन जाओगे, संपन्न बन जाओगे। जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, संपन्न बन जाओगे। और यहां पर और एक बात कही है कोटेश्वर अर्जुन, मुझे करके दिखाना है, अव्वल नंबर अर्जुन लेगा, अर्थात मुझे निमित्त बनना है, किसी भी बात का मुझे इनिशिएटिव लेना है, जो आज तक किसी ने नहीं की मुझे करके दिखाना है, ये बात करनी है। और एक बात यहां पर है, वो है बाबा ने कहा जैसे वर्ष बीतते जाते हैं तो जो भी पुरानी चाल है वह बीत जाए और नया उमंग नया संकल्प सदा रहे, तो यही संपूर्णता की निशानी है। अब पुरानी सब पुराना सब खत्म हुआ, अब सब नया हो। उस दिन एक भाई कह रहा था कि हम क्या करें, हमारे जो बड़े हैं वो नया चाहते ही नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं उदास हूं। तो हम ये बात भी हमें देखने को मिलती है कि एक ही पुरानी चाल को पकड़े हुए हैं और कई लोग दुखी इसलिए हैं कि नवीनता नहीं आ रही, परंतु हमें नवीनता अपने अंदर लानी है, चाहे बड़े छोटे साथी कोई भी हो, वो नवीनता लाए ना लाए, हमें अपने अंदर तो नवीनता हम ला सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है ना, तो नवीनता को लाना है। तो ये थी छठवीं बात। उसके बाद में अब आते हैं चार प्रश्नों की तरफ, अर्थात सातवीं पॉइंट, बाप के समीप आने का आधार। तो बाबा ने कहा था जो भी तुम में विशेषता है उसको सेवा में लगाओ तो उसकी मार्क्स मिलेगी उस सब्जेक्ट में। भगवान की भी अलौकिक भाषा है, पता नहीं कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा है और कौन से मार्क्स की बात कर रहा है। बाबा उपनिषद और शास्त्र जैसी बातें नहीं करते, ये मॉडर्न भाषा है, मार्क्स सब्जेक्ट। अध्यात्म में वास्तव में इस तरह की भाषा का प्रयोग शायद भगवान ही होगा जिसने पहली बार की है इस तरह की भाषा का प्रयोग, कौन से मार्क, कौन सी सूक्ष्म सब्जेक्ट। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें मार्क्स मिलेगी अगर अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ, अर्थात विशेषताओं को कार्य में लगाओ तो तुमको क्या होगा, मार्क्स मिलेगी। तो देखना है कि कैसे हम अपने हुनर को, अपनी स्किल्स को कार्य में लगाते हैं तो उसकी वृद्धि होगी। उसके बाद अगला प्रश्न अर्थात आठवीं पॉइंट है कि रूहानियत में कमी क्यों है। तो उसका उत्तर बाबा ने दिया कि स्वयं को अमानत नहीं समझते इसलिए रूहानियत में कमी है, और जिसकी सेवा करते हो उसको भी अमानत समझो। अमानत अर्थात मेरा नहीं, जब ऐसा होगा तब अनासक्त होंगे, विरक्त होंगे और फिर रूहानियत अपने आप आएगी। अगला प्रश्न था कि वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं में दो बातों की प्रवेशता है और जो आज हम देख रहे, भय और चिंता। हम देखते हैं कि जैसी जैसी रोज रोज खबरें आती है, नई नई खबरें, यहाँ ये हुआ वहां वो हुआ, हमारे अंदर बहुत ही बहुत भय प्रवेश करता है, चिंता होती है। तो बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना है, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना का स्वरूप बनना है, भयभीत नहीं होना है, उसके बजाय खुद खुशी सुख के गीत गा रहे, बेफिक्र बादशाह बनना है और फिर दूसरों को चिंताओं से और भयों से मुक्त करना है। ये कहां तक किया है अपने आप को चेक करो। फिर नौवीं बात थी, अगला प्रश्न अर्थात तीसरा प्रश्न, दसवीं बात, चौथा प्रश्न कि वर्तमान समय कौन सी सीजन चल रही है, तो वो सीजन है अकाल मृत्यु की सीजन। तो ऐसे समय पर हमारा क्या कर्तव्य है, अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देना है। ये बहुत बड़ा कार्य है जो हमको घर बैठे बैठे रोज करना है। कईयों का ये प्रश्न है कि बाहर निकल नहीं सकते, क्या करें। पहले तो लिस्ट बनानी है सुबह सुबह अमृत वेले के बाद, आज मुझे करना क्या है, वो कौन से पेंडिंग काम है, वो कौन सी अव्यक्त वाणी अजी थी जो मुझे पढ़नी थी मैंने नहीं पढ़ी? एक, वो कौन से योग के प्रयोग थे जो मुझे करने थे नहीं करे? और तीसरी बात, अगर सारा घर ज्ञान में चलता है परिवार, तो रोज कम से कम 2-3 सेशंस ऐसे करो कि घर में ज्ञान की चर्चा हो। सुबह 1 घंटा ज्ञान की चर्चा, दोपहर को 1 घंटा ज्ञान की चर्चा, शाम को ज्ञान की चर्चा, रात को ज्ञान की चर्चा जो चलते हैं। जिस घर में एक ही व्यक्ति ज्ञान में चलता है वो फोन पर ज्ञान की चर्चाएं करे। जिनको लिखने का शौक है वो लिखे, जो टेरेस पर जा सकते हैं वो टेरेस पर जाए, वहां पर बैठकर लिखे, चिंतन करे, मनन करे, अध्ययन करे। जिन्होंने यज्ञ के इतिहास के ऑडियोज नहीं सुने वो यज्ञ के इतिहास के ऑडियोज सुने। संकल्प कर ले, आज पूरे दिन भर मुझे दादी प्रकाशमणि के सारे लेक्चर सुनने, कल मुझे दादी गुलजार के सारे लेक्चर सुनने, परसों मुझे जानकी दादी के सारे लेक्चर सुनने, मनोरिंद्र दादी के सारे लेक्चर सुनने। तो यज्ञ के दादियों के लेक्चर सुने, घर बैठे बैठे करे क्या, लेक्चर सुने, ऑडियो विजुअल सत्संग करे, घर बैठे बैठे करे क्या, तो व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, अपने शरीर को मजबूत बनाए, अपने शरीर की स्टडी करे, कुछ डाइट के प्रयोग करे, उपवास के प्रयोग करे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के प्रयोग करे, शरीर क्लेंजिंग के प्रयोग करे। तो बहुत सारे प्रयोग हम कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देना है। तो सदा शुभ चिंतक बन, शुभ भावना, शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख सुख और शांति देनी है। तो ऐसी ये टोटल 10 बातें थी। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहली पॉइंट थी बॉडी मास्टरी की, दूसरी पॉइंट थी मधुबन निवासियों की, तीसरी पॉइंट थी बाप समान बनने की, चौथी दादियों से मुलाकात, पांचवी दान की, छठवीं सुनना कैसा और जो ओटे सो अर्जुन बनने की, सातवीं बाप को समीप लाने का आधार, आठवीं रूहानियत में कमी का आधार, क्यों है कमी, नौवीं दो बातें जो आत्मा में प्रवेश है संसार में इस समय, और दसवीं हमारा कर्तव्य क्या है। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, जितना स्वयं स्वयं को जान सकते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। तो हम फिर से उसी गीत को दोहरा रहे हैं कि जब भीड़ में खोए हो और कोई अपना है वही है। गीतकार कह रहा है, कभी कह रहा है ये वही पल है, और हम तो कहेंगे अब जब सब अपने घरों में बैठे हैं तो ये वही पल है जिसका हमें इंतजार था, अशरीरी बनने का, सभी इच्छाओं से मुक्त होने का, प्रैक्टिस करने का, रिहर्सल करने का, ऐसा ही समय आने वाला है। न मधुबन जा पा रहे हैं जो आगू में रहते हैं, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, ना घूमने फिरने निकल पड़ रहे हैं, ये वही पल है, अभी प्रैक्टिस करनी है। जब भीड़ में खोए हो और कोई अपना है, यही तो वो पल है। समझना, कल की मुरली में था बेहद का एडॉप्शन, ये बहुत गहराई से समझने की बात है। जब भीड़ में खोए हो और कोई अपना है, मुझे समझना है कि बाबा ने अब मुझे अपनाया है और घर पर चुपचाप बैठ कर रखा है। क्वारंटाइन, दिस स्पिरिचुअल लॉकडाउन, दिस स्पिरिचुअल क्वारंटाइन, ये आध्यात्मिक एकांतवास है। और धूप में थोड़ी हवा चले, अब तक धूप थी ये तो थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ये पल हाँ वही है। और धुन कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है, यही तो धुन चल रही है प्रभु प्रेम की। अपने आप को सब तरफ से बुद्धि को हटाकर एकांत में बैठ जाओ, तपस्या में विलीन हो जाओ। और फकीर को जब खुदा मिले ये पल हाँ वही है, और फकीर को जब खुदा मिले, जैसे हम ही वो फकीर है, और इस क्वारंटाइन में, इस लॉकडाउन में, इस एकांतवास में हमें खुदा मिल गया है, उस खुदा की खुदाई मिली है। जब भीड़ में खोए हो और कोई अपना है वही है, जब धूप में थोड़ी हवा चली ये पल हाँ वही है, और धुन कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है, और फकीर को जब खुदा मिले ये पल हाँ पल ये वही है। ओम शांति।
अपनाए वही है। जब धूप में थोड़ी हवा चली ये पल हाँ वही है। और तुम कोई मीठी सी जो दिल छू जाए वही है। और फकीर को जब खुदा मिले ये पल चली ये पल।